हरे कृष्णा लेक्चर बाय हिज ग्रेस केशव आर्य प्रभुजी ऑन 10th कैंटो 21 चैप्टर 16 टेक्स्ट नंबर 16 ऑन 18th ऑफ अगस्त 2011 ऑन द ओकेजन ऑफ कृष्ण बलराम कथा
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय भुजन वल्लभ गिरिवर धारी जय भुजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना वन चार यमुना यमुना तीरा वन चार यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी ओ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा बन चार यमुना तीरा बन चार यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
चार्य स्त्रोत्र शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव बिंद की श्री श्री राधा राधिकर भगवान की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताय भगवान की उपस्थित भक्त बिंद की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू गोविंद गौरांगन ग्लोरीज टू शील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में और इस कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में दशम स्कंद 21वां अध्याय श्लोक संख्या 16 बोलने का प्रयास कीजिए। दृष्ट्वा आतपे व्रज पशुन सह राम गोपे सच्चारयन्तम् अनु वेणुम् उदीरयन्तम् ప్రేమ ప్రబుద్ధయ ఉదిత కుసుమ్ ఆవిలిధి సఖ్యు వద్ధఘా స్వవపుష అంబుద ఆతపత్రం. దృష్ట్వా తపే వ్రజ పశున్ సహ రామ గోపే సంచారయంతం మను వేణు ముదిరయంతం ప్రేమ ప్రవద్ధ ఉదిత కుసుమావలిభి సఖ్యుర్వఘాత స్వపశుంద ఆత్పత్రం. దృష్ట్వా తపే వ్రజ పశున్ సహ రామ గోపే సంచారయంతం మను వేణు మునిదరయంతం ప్రేమ ప్రవద్ధ ఉదిత కుసుమావలిభిః సఖ్యు వయర్ధాత్ స్వపుషాంధు ఆత్పత్రం. దృష్ట్వా తపే వ్రజ పశున్ సహ రామ గోపే సంచారయంతం మను వేణు ముదిరయంతం ప్రేమ ప్రవద్ధ ఉదిత్ కుసుమావలిభిః సఖ్యు వ్యదఘాత స్వపుషాంతు ఆత్పత్రం. బోలి
हरे कृष्ण शब्दार्थ दृष्टवा देखकर आतपे सूर्य की भरी गर्मी से ब्रज पशु ब्रज के पालतू पशु सह साथ साथ राम गोपे बलराम तथा ग्वालों के संचारयंतम चराते हुए अनु बारंबार वेणु वंशी उदीरयंतम तेजी से बजाते हुए प्रेमा प्रेमवश प्रवृद्ध बड़ा हुआ उदित उठकर कुसुमावली भी फूलों के समूहों से ओस के कणों से युक्त सख्यु अपने मित्रों के लिए व्यघात बनाया स्वपूषा अपने ही शरीर से अम्बुदा बादल ने आतपत्रम छाता। अनुवाद इस प्रकार है, भगवान कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के संग में ब्रज के समस्त पशुओं को चराते हुए ग्रीष्म की कड़ी धूप में भी निरंतर अपनी बांसुरी बजाते रहते हैं। यह देखकर आकाश के बादल ने प्रेमवश अपने को फैला लिया, ऊंचे उठकर तथा फूल जैसी असंख्य जल की बूंदों से उसने अपने मित्र के लिए अपने ही शरीर से छाता बना लिया था। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद की, श्री प्रभुपाद के, श्री प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण से में कहा है पुस्तक में, कभी 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 शरद की झुलसती धूप असहाय हो जाती थी, अतः कृष्ण तथा बलराम एवं उनके मित्र जब अपनी अपनी वंशी बजाने में व्यस्त रहते तो दयावश उनके ऊपर आकाश में बादल प्रकट हो जाते। ये बादल कृष्ण के साथ मैत्री स्थापित करने के लिए उनके सिरों के ऊपर सुखद छाते का काम करते थे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं श। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो इस विशेष अध्याय में गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणु गीत की सराहना अध्याय में हम लोग 16वां श्लोक ले रहे हैं, जिसमें कि एक विशेष भावगान के वेणु बजाने से घटना का जो है प्रभुपाद जी प्रपट में उजागर कर रहे हैं। और यही परपट में भी है, यही अनुवाद में भी है कि किस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वंशी बजाते हुए ग्वाल बालों के साथ वृंदावन की जंगलों में जो है जाते थे, तो झुलसते हुए गर्मी का भी उनको सामना करना पड़ता था। और फिर यहां पर एक विशेष चीज कि भगवान की सुंदर वेणु का मतलब, जिसका कि अलग अलग मैसेज अलग अलग भक्तों के लिए है, तो बादल भी जो है भगवान से मित्रता करने के लिए अर्थात उनके सर के ऊपर आ जाते थे ताकि भगवान को जो है किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, गर्मी ना लगे। तो भगवान के इस तरह के गुणों में जिस पर्टिकुलर जो अध्याय चल रहा है वेणु गीत की, वेणु की जो है सराहना की गई है। वास्तव में तो भगवान का हर अंग, हर बात और हर पैराफर्नालिया शरीर से जुड़ा हुआ, सभी चीज जो है बहुत जो है कह सकते हैं उसको कि उसकी जो है कमी पड़ जाएगी शब्दों की भी उनको उनकी व्याख्या करते हुए। यहां पर फिर भी गोपियों के भाव को दर्शा गया है श्रीमद् भागवतम के अध्याय में, जिसमें कि भगवान जो है वंशी बजा रहे हैं और उस वंशी वेणु में विशेषकर अलग अलग तरंगे अलग अलग मैसेजेस फॉर सभी के लिए निकल रहे हैं। जीवात्मा में जैसे कि बताया गया शास्त्र में कि 50 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, और भक्तों ने जो है रघु गोस्वामी इत्यादि ने जो है कई गुणों की व्याख्या करी है, जिसमें से कि भक्ति रसामृत सिंधु में 64 गुण जो है बताए गए हैं, और उनमें 50 गुणों की चर्चा बताते हैं कि की जाती है कि वो जो 50 क्वालिटीज हैं जीवों में भी पाई जाती हैं आंशिक रूप में, ब्रह्मा जी में भी पाई जाती है काफी अच्छे रूप में, और इसके अलावा 50 गुण पाए जाते हैं वो क्वालिटीज। और उसके बाद शिव में जो है 55 गुणों का व्याख्या मिलती है कि उनके अंदर 5 गुण अधिक हैं, में संहार इत्यादि भी है। और उसके अलावा विष्णु में जो है 60 गुण हैं पूर्ण मात्रा में, और इससे नीचे जो गुण हैं जिन लोगों में वो आंशिक रूप में पाए जाते हैं, सारे पूर्ण रूप में नहीं पाए जाते, क्योंकि विष्णु में ये 60 गुण हैं ये पूर्ण रूप में पाए जाते हैं। और भगवान राम में भी जो है जब अवतार हुआ तो उसमें लगभग 2.5 गुणों को और ज्यादा एग्जिबिट किया गया। और भगवान श्री कृष्ण के जो हैं गुण हैं, जो उन्हें 64 कलाएं बोलते हैं, 64 गुण भी बोलते हैं, तो 64 के 64 गुण जो है भगवान में मिलते हैं। ये जो 4 स्पेशल गुण हैं ये भगवान श्री कृष्ण के अंदर ही पाए जाते हैं, ये विष्णु तत्व में नहीं है, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य इत्यादि। तो ये जो 4 विशेष गुण हैं ये गुण भगवान के अंदर उनकी भगवत्ता को और सिद्ध करती है। जैसे लीला माधुर्य में भगवान की जो सुंदर लीलाएं हैं अपने परम भक्तों के साथ, जिसमें कि सारे प्रकार के रसों का आस्वादन करते हैं, तो वो और अवतारों में नहीं मिलता है ना। और जिस प्रकार एक स्पेशल गुण है जो किसी में भी नहीं है, वो है वेणु माधुर्य। तो ये विशेष गुण से भगवान जो है अपने और अवतारों से अपने को भिन्न करते हैं। और ये खाली बांसुरी बजाने की कला ही सब कुछ नहीं है, ये तो आप कहोगे हमारे आसपास के लोग भी बजाते हैं। एक सरदार जी आते हैं यहां पर गुरु गौर आरती में, वो भी बड़ी अच्छी वेणु बजाते हैं। तो हम जो सीखते हैं ये वेणु दूसरी वेणु है, ये बंसरी दूसरी बंसरी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो वेणु है वो कुछ अलग ही है। नहीं तो कोई है तो 2 महीने का कोर्स करके तो मेरे अंदर भी वो गुण आ सकता है, तो क्यों भगवान जो अलग है, क्योंकि जीवात्मा की टेंडेंसी है, वो भगवान की क्वालिटीज जो भगवान के पास है वो चाहता है सारी मेरे अंदर होनी चाहिए। भगवान को इतना ग्लोरीफाई क्यों किया जाता है, तो द्वेष है जीवात्मा को। एक व्यक्ति की इतनी तारीफ अगर हो जाए किसी भी चीज में, होता है कंडीशन सोल्स के साथ, क्लासरूम में, ऑफिसेज में, इवन मंदिर आने के बाद भी भक्तों के अंदर समस्याएं बनी रहती हैं। एक भक्त के अंदर कोई अगर अच्छा गुण है तो पहले तो चाहता है, क्योंकि उस गुण की वजह से उसको क्या किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो ये मेरे अंदर क्यों नहीं। तो पहले कई साल भक्तों को, साधकों को ईर्ष्या द्वेष के कारण दिखने वाली क्वालिटीज जो हैं मन को काफी भाती हैं और वो उनको प्राप्त भी करना चाहते हैं, सेवा का नाम देकर, गुरु की इंस्ट्रक्शन का नाम देकर। भाव पीछे हमेशा कुछ और ही रहता है। वो बात अलग है कि भगवान की हर सेवा, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल है, उससे शुद्धिकरण होता है, लेकिन जो प्रोसेस शुरू हुआ उसमें वो कंटेमिनेट था, धारणा गलत थी कि हाँ मुझे ये चाहिए, क्योंकि इस पोस्ट में क्या है, सबसे ज्यादा नमस्कार है, सबसे ज्यादा प्रणाम है, दो चार छह आसपास लगे रहते हैं, घूमते रहते हैं, या स्टेज पे बुलाया जाता है ऐसे पर्टिकुलर सेवा को करने से, है ना। तो ये सेवा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी देखते हैं, फर्स्ट क्लास जो लड़का आता है, क्लास फर्स्ट आता है, टीचर्स प्राइज देते हैं उसको, मिनिस्टर से मिलने के लिए वो सबसे आगे जाता है। तो बच्चों के अंदर हमेशा एक कॉम्पिटिशन की भावना बनी रहती है रागद्वेष के कारण। इसी प्रकार जो साधक लोग भी हैं, क्योंकि वही मेंटालिटी उसी चेतना के साथ जब भक्ति में आते हैं तो वही मेंटालिटी कई सालों तक रहती है, और काफी समय उनका भक्ति करते हुए, सोलह माला करते हुए या चार नियमों का पालन करते हुए काफी समय इन अनर्थों के घेरे में निकल जाता है। और ऐसे भक्तों का, साधकों का कई वर्षों तक यही प्रश्न होता है, क्या चैंटिंग में मन नहीं लग रहा, भक्ति में आनंद नहीं आ रहा, इतने हर कष्ट क्यों हो रहे हैं मुझे, है ना। तो काफी समय तक वो काफी समय इन्हीं अनर्थों से जूझता हुआ एक अनर्थ छोड़कर दूसरे अनर्थ को प्राप्त करने की क्रिया में लगा रहता है। तो एक दिन हम बात करके बताया था कि कई बार तो एक साधक को भक्त अच्छा बनने के लिए भी उसको अनर्थों की आवश्यकता होती है, उसको कुछ अनर्थ दिए जाते हैं। जैसे बच्चे से अगर कोई चीज, गलत चीज उसके हाथ में आ गई है, चाकू हाथ में आ गया और वो छोड़ नहीं रहा, तो आपको कुछ ऐसी चीज देनी पड़ेगी उसको जिससे कि वो उसके मुंह को भंग करे और दूसरी चीज को के प्रति आकर्षित होकर उसको पकड़े। तो भक्तों को भी ऐसे किया जाता है, जो साधक लोग हैं उनको भी, कि मान लो अगर उसने कोई अननेसेसरी अनर्थ पाला हुआ है कि नहीं मैं जो बहुत बड़ा प्रचारक बनना चाहता हूं बस, या मैं ये वाली सेवा करना चाहता हूं, ये पर्टिकुलर सेवा मेरे से ही रिलेटेड है और मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, और क्योंकि तो इसमें सब वो नहीं बोलेगा कि सबसे ज्यादा पूछ होती है इसमें, तो फिर सीनियर या गुरु लोग उसको कोई ऐसी सेवा भी देने का प्रयास करते हैं जिससे कि उसका एक तो अनर्थ खत्म हो, या फिर कम से कम उसको छोड़ के, उसका अनर्थ छोड़कर किसी दूसरे में लग। तो इस बीच मन के अंदर बहुत व्यथा रहती है और उस व्यथा को जो है वो निकालते नहीं है या शेयर नहीं करते, तो उसके कारण वो अनर्थ जो है उसमें पानी डालते रहते हैं, रोज चैंटिंग का पानी और एसोसिएशन का, हियरिंग का पानी जब डलता रहता है वो परमानेंट हो जाता है, और गहरा हो जाता है। जब व्यक्ति, जब साधक सही चेतना में भक्ति करने का प्रयास करता है, प्रार्थनाएं करता है, तो वो जो अनर्थ भी है जिसके पीछे लगा भी हुआ है वो उसके शुद्धिकरण के कारण बन जाता है। धीरे धीरे भक्तों को अचानक लगने लगता है कि ओहो हो गया ना, बहुत हो गया, बहुत प्रणाम हो गया, हाँ ये तो एक अनर्थ है, समझ आ जाता है कुछ समय के बाद। और जो सही चेतना में नहीं है वो और आगे बढ़ना चाहता है उसमें। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण, भगवान का नाम और भगवान की सारी सेवाएं सब जीवात्माओं के शुद्धिकरण के लिए हैं, लेकिन इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके व्यक्ति अपना नुकसान भी करता है। भक्तों का संग जैसे बताया गया कि मुक्ति के द्वार खोल देता है, और इवन भक्ति तो है, भगवान के पास नहीं है भक्ति, भक्ति तो, भक्ति का जन्म ही भक्तों के बीच में होता है, भगवान कहते हैं ऐसा, है ना, शास्त्र बताया गया सभी। तो भक्ति का जन्म क्योंकि भक्तों के बीच में होता है, और जब भगवान के भक्तों के बीच में भक्त साधक भी आते हैं तो भक्ति में आगे भी बढ़ सकता है और भक्ति से हमेशा के लिए दूर भी हो सकता है, यह भक्ति से हमेशा सदैव के लिए जो है संघर्षपूर्ण जीवन ही रह सकता है, कारण अगर ठीक ढंग से परफॉर्म नहीं की जा रही। तो इस प्रकार जीवात्मा की हमेशा से टेंडेंसी रही है कि वो बस देखना चाहता है कि किस सेवा में सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन है, और फिर उस प्रकार की सेवा करना चाहता है, या वही सेवा दिमाग में रहती है, उस चीज पर नहीं जाता वो जो गुरु के द्वारा बताई गई साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि ऐसा करो आप फिलहाल, तो फिर इस प्रकार जो है नुकसान रहता है। तो वही जीवात्मा का भाव रहता है कि हाँ, क्योंकि कृष्ण को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, कृष्ण के अंदर ये क्वालिटी भी है, ये क्वालिटी भी, जब गुणों को सुनते हैं, और जब कभी भक्तों के गुणों की भी चर्चा होती है तो जीव चाहते हैं कि हाँ मेरे अंदर भी ये गुण हों, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरे अंदर गुण होता कि मैं भगवान का अच्छा भक्त बन सकूं, वो इसलिए ताकि लोग जिस प्रकार उस व्यक्ति की तारीफ करते कि वो बहुत हम्बल डिवोटी है, रात को इतने बजे सोता है, इतने बजे उठता है, इतनी रीडिंग करता है, ऐसे समय पर भी देखो ऐसी सेवा करते हुए उसने ये कर दिखाया, तो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हाँ मुझे भी करना चाहिए। जैसे कि गोपियां इसी गीत में थोड़ी सी वेणु को सुनकर, वेणु को देखकर आपस में चर्चा करती है, क्या कहती है कि इस वेणु ने ऐसी कौन सी तपस्या की अपने जन्मों में जो कि भगवान श्री कृष्ण के अधरों का पान कर रही है, हर समय उनके अधरों से लगी रहती है। गोपियों का हम भी जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी तपस्या उसने की ताकि हम भी परफॉर्म करें उस तरह की तपस्या। इसके माता पिता ने कौन सी तपस्या की होगी, नदी नारे ना, ये सब इसकी माए नदियां, क्योंकि वहीं पर बंबूज उगते हैं ना, तो ऐसा क्या कर दिया इसने, तो पूरी की पूरी अपनी परंपरा को ग्लोरीफाई करवा दिया, एक बांस पेड़ इत्यादि पूरी प्रजाति जो है ग्लोरीफाई की जा रही है आज, किसलिए, क्योंकि उनकी एक उनका एक वंश, एक पुत्र उनका जो है वंशी बनकर भगवान श्री कृष्ण के अधरों से अधरों का पान कर रहा है। तो गोपियों के अंदर भी इस तरह का भाव आता है, लेकिन ये भाव क्या है कि हम भी ऐसी कुछ तपस्या करें कि हम भी भगवान श्री कृष्ण का अधरों का पान कर सकें। कई बार गोपियां ग्वाल बालों के प्रति भी थोड़े से इस प्रकार का स्पिरिचुअल ईर्ष्या द्वेष दिखाती कि इन लोगों ने ऐसे क्या पुण्य करे, ऐसे क्या तपस्या करे कि भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं सुबह से शाम तक। हमको तो जब भगवान अपनी वेणु बजाते हैं तो जाकर अपनी पतियों से छुपकर, माता पिता से छुपकर भागकर जाना पड़ता है कृष्ण के पास, और जब सुनते हैं तो कई बार उनको भी सुनाई देती, मना करते नहीं जाना उधर हस्बैंड लोग, है ना, कुछ क्षणों के लिए एक दर्शन होता है, या कब कहते हैं परफेक्शन ऑफ द आईज क्या है गोपियों के लिए, संध्या समय में या सुबह जाते समय जब भगवान कृष्ण और बलराम अपने अपनी अपनी वेणु बांसुरी को लेकर बांसुरी बजाते हुए जब गाय चराने के लिए जा रहे हैं, यहां की परफेक्शन है गोपियों के लिए, सुंदर वीणा बजाना और गाय के खुरों से उड़ती हुई धूल भगवान के जब मुख पर, उनके बालों पर, सांवले रंग के कृष्ण हैं और मटियाली मिट्टी, सोच कर देखिए लगता जैसे गोल्ड पाउडर छिड़क रहे हैं भगवान के ऊपर, है ना, उनके जो बाल हैं, है ना, काले घने बालों में जो है सुनहरा रंग चढ़ा हुआ है। इस सुंदर रूप को देखने के लिए गोपियां शाम को अपने घर बार सब छोड़कर सीधे दरवाजों पर या छतों पर आ जाती थी कृष्ण की बांसुरी को सुनते हुए कि आ रहे हैं कृष्ण बलराम सारे गांव के साथ, और कहते थे कि ग्वाल बालों ने ऐसे क्या तपस्या करी है पिछले जन्मों में कि आज भगवान के साथ साथ खेल रहे हैं, गौ चराने जा रहे हैं, कितना दो तीन पहर तो भगवान ग्वाल बालों के साथ ही रहते हैं। बताइए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो अष्टकालीय जो लीला है उसमें भगवान सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद माता यशोदा के पास जाते हैं, उसके बाद कपड़े कपड़े पहनने के बाद तब से ग्वाल बाल आना शुरू कर देते हैं उनके घर, कब तक रहते हैं पूरा दिन शाम तक उनके साथ ही रहते हैं, और उसके बाद इतना ही नहीं वो भगवान के कंधे पे हाथ भी रख लेते हैं, भगवान को गले भी लगा लेते हैं, भगवान के कंधे पर चिढ़ जाते हैं। तो गोपियां कहती हैं ओह सुंदर शरीर कृष्ण का, किस प्रकार इन ग्वाल बालों ने क्या सी साधना है, तपस्या करी, चार नियम फॉलो किए इन्होंने, 16 माला रोज करी कितने समय तक करी इन्होंने कि जो आज ये कृष्ण के साथ है, हमसे नहीं होती ये तपस्या। प्रभुपाद जी कह गए, गुरुजन कह गए, चार नियमों का सख्ती से पालन, 16 माला का कम से कम जब, बहुत ज्यादा स्ट्रगल लगता है। तो इस प्रकार की साधना, किस प्रकार की साधना है तपस्या की ताकि हम लोग भी कृष्ण के साथ इस प्रकार खेल पाते। इसलिए भगवान के विरह में जब गोपियां जो है रहती हैं तो कृष्ण की उन लीलाओं को जो सुनी है सारी लीलाएं जो देखी हैं कृष्ण के विरह में, उन सबको करने का प्रयास करती। तो कभी कोई कृष्ण की लीला करते हुए कोई कृष्ण बन जाती है, कोई गोपी बन जाती है, और वो सब लीलाएं बाल लीलाएं किस प्रकार कालिया का दमन किया, तो एक गोपी दूसरी गोपी के कंधे में चढ़ जाती है कि मैं कृष्ण हूं और तू कालिया है और आज अपने पैरों से मैं तुझे मार दूंगी। तो कोई मुंह खोल लेते कि मैं अघासुर हूं, तुम सब मेरे मुंह में आओ, मैं तुम्हें जो हाज मारूंगी, है ना। तो इस प्रकार के नाना असुरों का कोई बकासुर बनता है, कुछ बनता है। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियां उनके विरह में कृष्ण बनकर जो है उन लीलाओं का स्मरण करती हैं। गोपियां जब क्या कहते हैं दही मंथी मक्खन बनाती हैं, है ना, उस समय भी कृष्ण की चर्चाएं चल रही हैं, कृष्ण का गुणगान चल रहा है, कृष्ण के एक एक गुण के ऊपर, लीलाओं के ऊपर जो है मनन चल रहा है। और फिर मन से चाहते भी हैं कि कृष्ण मेरे घर आके मेरा मक्खन चुराएं, क्योंकि एक लीला इतनी अच्छी हो जाएगी कि पूछो मत, मेरे घर आए कृष्ण। और जब पकड़े जाते थे कृष्ण, तो जब शिकायत लगती थी तो बोलते थे कि कृष्ण को कई लोग बुलाते थे कि हमारे घर में आओ ना आज, प्रसाद पाओ आके, मक्खन लगाओ फिर मक्खन। वो कहते मैं भूखा हूं, क्या समझ रखे, 9 लाख गाय मेरे पिताजी के पास, तुम्हारे बासी मक्खन का या वैसे मक्खन का मुझे कोई शौक नहीं। और जिन गोपियों का कृष्ण से द्वेष रहता था कि ये मेरे घर ना आए, खबरदार अगर मेरे घर आए तो, हाँ ये कोई उचित प्लेटफॉर्म है मक्खन चुराने का। उधर चुराने का मजा ही क्या है जहां पर सब कुछ ओपन है, जहां सारी चोर बैठे हैं, या जहां इजिली अवेलेबल है। तो चोरी करके खाया गया मक्खन वो ज्यादा लगता था भगवान को। तो भगवान उन गोपियों के घर जाते थे और क्या करते थे, उनके साथ जो दोस्त होते थे कई बार वो फंस जाते थे कुछ ना कुछ सुंदर लीलाएं तो करनी होती थी, तो मक्खन चुराया, सब कुछ किया। तो इतने सुंदर लीलाएं, इतने सुंदर गुण भगवान के, और इन गुणों में जो है गोपियां इनका चिंतन स्मरण करती रहती थी। भगवान की वेणु, वंशी और मुरली, इन तीनों को अलग अलग, भगवान के एक अलग से पार्षद है जिनका नाम है पात्री, प्रभु नहीं, पात्री जो है भगवान के ग्वाल बाल है, जिनके पास यहां पर बहुत सारी वेणु बांसुरी हर तरह के स्टाइल की रखी हुई है। और वो भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी बड़ी सुंदर ट्यूनिंग है, उनको मालूम है भगवान के मन में क्या चल रहा है इस समय, क्या देख रहे हैं, क्या चाहते हैं, गोपी को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो एकदम से निकाल कर कहते हैं ये लीजिए, और भगवान बस देख भी नहीं रहते, उठाते हैं और उसको बजाना शुरू करते हैं। क्या मैसेज जा रहा है, कहां ब्रह्मा जी को क्या मैसेज जा रहा है, शिव को क्या मैसेज जा रहा है ना, क्रिएशन में क्या मैसेज जा रहा है, गोपियों को क्या मैसेज जा रहा है, ग्वाल बालों को क्या मैसेज जा रहा है। इतनी सारी गायें बताते थे कि जैसे एक ग्वाल बाल के पास कितनी गायें होती चराने के लिए, 108 या लगभग शायद बताते थे 1000 गायें एक ग्वाल बाल ऐसे एक उसका लीडर होता था। और इस प्रकार के हजारों लाखों गायें जो हैं चरने जाती थी, और भगवान का पास एक बीट बैग भी था उनका, और उस बीट्स पर भगवान गौरी श्यामली और नाना प्रकार के नाम लेकर चैंटिंग करते थे और सारी गायों को बुलाते थे, और बंशी बजाते थे तो गायों के कान जो हैं जिस तरफ से वंशी की ध्वनि आ रही है उस तरफ को गायें मुंह करके अपने कानों को उस तरह कर लेते थे, और फिर भागते हुए कृष्ण के पास आते थे। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में बताया गया एक विशेष जगह पे कि भगवान श्री कृष्ण की जो वंशी है वो एक चिड़िया के समान है, उसकी जो ध्वनि है वो चिड़िया के समान है, और वो चिड़िया अपना घोंसला, उसका जो घोंसला है वो क्या है, वो गोपी के कान है, और उन कानों में केवल वो चिड़िया ही रहती है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी ही की ध्वनि ही अंदर जाती है, दूसरी ध्वनि इज नॉट अलाउड। जैसे भक्त लोग जब कई बार प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कथा सुनने का प्रयास करते हैं, कृष्ण का नाम सुनने का प्रयास करते हैं, तो कई बार जब वो कोई मटीरियल सॉन्ग सुनते हैं तो इमीजिएटली बोलते प्लीज बंद करो, है ना, अदर साउंड्स आर नॉट अलाउड, है ना, फिल्मी सॉन्ग्स, है ना, उल्टे सीधे म्यूजिक, जिसमें कृष्ण नहीं वो सॉन्ग बेकार, जिसे भक्तों ने नहीं गाया वो सॉन्ग, इवन कई बार डिवोटीज वो सॉन्ग भी नहीं सुनना चाहते, पसंद करते कई बार क्या, अच्छे भक्त नहीं सुनना चाहते जो कि कृष्ण पे ही बने। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं भाई तुम लोग उन प्रभु जी की पूरी दुनिया उनकी जय जयकार करते, तुम उनके सॉन्ग नहीं सुनते, तुम उनके सॉन्ग नहीं सुनते, है ना? तो इसलिए नहीं सुने जाते क्योंकि उस सॉन्ग्स को गाने वाला, बनाने वाला, कंपोज करने वाले का पीछे उद्देश्य क्या था? शुद्ध प्रेम नहीं, क्या था? पैसा। हर व्यक्ति जिसने म्यूजिक दिया, जिसने सॉन्ग लिखा, जिसने जो जो भी उसके अंदर है, जिसका स्टूडियो, उसके सबका उद्देश्य क्या था? कि हमें धन चाहिए। ये गाना तो बड़ा अच्छा बना, वाह। आप सुनो ना आजकल के सॉन्ग, से कर्णप्रिय लगते हैं कुछ लोगों को बहुत, और सुबह शाम सारे सॉन्ग चलते हैं, लेकिन डिवोटीज आर नॉट इंटरेस्टेड। ये भी नहीं सुनना है। क्या सुनना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रूपा जी लिख रहे हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण की वही वंशी की ध्वनि है जो आध्यात्मिक जगत में बज रही है। तो यहां पर कुछ गोपियां, यहां पर कुछ भक्त भगवान श्री कृष्ण की इस वंशी को सुनने का प्रयास करते हैं और उसी को सुनना चाहते हैं। ये एक भक्ति क्वालिटी है। जिस प्रकार गोपियों के जो कान है वो एक चिड़िया के लिए घोंसला बन गई और चिड़िया कभी अपने घोंसले में दूसरे को नहीं आने देती, उसी प्रकार भगवान की वंशी की ध्वनि जिन गोपियों के कर्ण में जा चुकी है वो फिर और साउंड्स आर नॉट अलाउड, किसी और साउंड को फिर नहीं सुनना चाहते। उसी प्रकार वही आध्यात्मिक वंशी, वही ध्वनि इस भौतिक जगत में हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में उसको रिप्रेजेंट करती है और डिवोटीज उस साउंड को अपने मुख से बोलते हैं और उसका श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवतम के रूप में है वंशी जो मैसेज हमें मिलता है। तो इस प्रकार भक्त लोग केवल भगवान का ही गुणगान सुनना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम की कथा, श्रीमद् अन्य ग्रंथों की कथा या चैंटिंग इत्यादि, अब ऊपर जो ग्वाल बाल हैं, जो गोपियां हैं, वो कहां कर रही हैं सब? उनके सामने तो केवल कृष्ण की सुंदर लीलाओं का स्मरण, कीर्तन और मनन चलता रहता है। वहां पर फिल्मी सॉन्ग नहीं है पिछलोड़ में कि चलो आज बोर हो गए कुछ देर वंशी सुन सुनकर कुछ और सुनाओ, है ना? भगवान जी आजकल सबसे नीचे से टॉप 10 पे कौन सा सॉन्ग है वो सुनाइए प्लीज, ऐसा ऐसी मेंटेलिटी नहीं है उनकी। वो कृष्णा है ऐसा कोई सॉन्ग इसमें तो लोगों ने जो है इतना परफेक्ट, यू नो, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना सब कुछ लगाते हैं। खैर कुछ सुकृतियां तो मिलेंगी इन लोगों को भी, नहीं कि लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं, भगवान की वंशी के ऊपर ही बजाते हैं, है ना? यू आर द, कई सॉन्ग्स हैं इस तरह के। तो भक्त लोग हरे कृष्ण महामंत्र पे भी आया था, आधा फूटा फूटा सा सॉन्ग आया था कई। तो भक्त लोग इसको, भक्त लोग नहीं मतलब जो अभक्त भी हैं वो भी गाते हैं इसको, लेकिन सुकृतियां मिलती हैं कुछ। भगवान का नाम लिया है तो फल मिलेगा। जिन्होंने सॉन्ग्स भी बनाए हैं जो, कुछ ना कुछ सुकृतियां मिलेंगी इनको। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जिस प्रकार जिसका गला सुंदर है, जो भगवान के लिए कुछ अच्छा गा सकता है, अगर वो अपना गला जो है फिल्मी सॉन्ग्स और मटेरियल सॉन्ग्स और दूसरी चीज की ग्लोरिफिकेशन करने में लगाते हैं तो निश्चित रूप से अगला जन्म उनका जो है गधे के रूप में होता है, क्योंकि गधे को अपनी वाणी बहुत मधुर लगती है जब वो करता है ढैंचू ढैंचू, तो उसको बड़ी अच्छी लगती है उसकी वाणी अपनी कि मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूं। कौवे की कर्कश आवाज सुनी है कौवों की, उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा बोलूं, सुबह शाम चैन चैन लोग भगाते हैं, निकल यहां से। उसको समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों ऐसा समझ रहे हैं लोग, मुझे समझ नहीं पा रहे लोग तो कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार जो गला, जो कंठ भगवान का गुणगान नहीं कर पाता, तो बताया जाता है कि उनको ये सब बनना पड़ेगा। कई अच्छे भक्त हैं जिन्होंने केवल भगवान की चर्चा, भगवान का ही गुणगान किया, है ना? आपने कहीं नहीं सुना होगा कि नरोत्तम दास जब ठग गए वैष्णव गीत गाते गाते, तो उन्होंने जो है दो तीन सॉन्ग ऐसे गा दिए। कहीं सुना है कि उनकी बुक उठाओ नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा की, उसमें 3-4 सॉन्ग ऐसे मिले प्रभु जी हमें जो खाली थे तो टाइम नहीं मिला उनको, तो उन्होंने ये गाए, देश के ऊपर गा दिया, जिंदगी समथिंग करके, तो ऐसा नहीं था। जो शुद्ध भक्त है उसके कानों में केवल कृष्ण के वंशी के अलावा या कृष्ण, अब उसकी जो जिह्वा है उसकी सार्थकता वो जानता है कि किसमें है। जिस प्रकार स्वयं नरसिंह भगवान श्रील प्रभुपाद जी को कह रहा हूं, प्रहलाद महाराज को, ये ना प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं कि तुम्हारे दर्शन मात्र से आंखों की परफेक्शन, तुम्हारे बारे में सुनने मात्र से कानों की परफेक्शन है, क्योंकि भक्तों के अंदर ऐसी क्वालिटीज है। तुम्हें गले लगाने से, भक्तों को शुद्ध भक्तों को गले लगाने से हमारे शरीर की परफेक्शन, तो हर अंग की परफेक्शन तब है या इसकी सार्थकता, इसकी सिद्धि तब है जब ये भगवान को ग्लोरीफाई करती है, भगवान के टच में है या भक्तों के टच में, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। इसलिए बोला गया है कि जिन कानों में कृष्ण की कथा प्रवेश नहीं करती वो किसके समान है, जिन बिलों के समान है, बिल जिसमें सांप रहते हैं। जो लोग ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई करते हैं जिनके अंदर एक गुण भी नहीं है भक्ति का, जिसके भगवान का नाम नहीं निकलता जिनके मुंह से, वो गधे घोड़े कुत्ते सुअर ऊंट इनके समान है। भागवतम दूसरे स्कंद में लिखा है, अब मैं सोच रहा मैं गालियां दे रहा लोगों को। जिन लोगों का सर भगवान के आगे नहीं झुकता वो सर क्या है, वेट है, बोझ रखा हुआ है, हेलमेट रखा, जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है सुबह शाम हेलमेट पहन के घूम रहा है, पूछो क्या है भाई, चाहे वो बोले मेरा नाम हेलमेट है लेकिन फिर भी हेलमेट क्यों सर पे, कोई रखना चाहता है वेट सर पर अननेसेसरीली। तो जिस व्यक्ति ने अपना सर भगवान के आगे नहीं झुकाया तो उसका सर एक बोझ है, और जिस व्यक्ति ने जिस भगवान के चरणों की धूली, भक्तों के चरणों की धूली और अपने शरीर को पवित्र नहीं किया भगवान के नामों से, तिलक इत्यादि से, तो उसका शरीर मृत के समान है, जीवन मृतो हिस्सा। जिसने अपने सेवा को अंगेज नहीं किया भगवान की सेवा तो वो बस जी रहा है, उसका सांस लेना भी कुमार की झोंकनी के समान है, जो वो पंप मारता रहता है और उसमें जो है ऐसे करके हवा निकलती रहती है और आग ज्यादा बढ़ती रहती है। किस कारण से, क्योंकि वो जो है भगवान का भक्त नहीं है। तरवा क्यों ना जीवन थी, पेड़ क्या लंबी लंबी उम्र नहीं होती इन पेड़ों की, 300 साल, 350 साल। कितना लोग ज्यादा अहंकार फील करते हैं अपनी उम्र बताकर कि मैं इतने का हूं, लगता इतने का हूं, उसी की खुशी में जीवन बिता देते हैं, हूं इतने का, लगता इतने का हूं, एक अलग सी फीलिंग है खुशी मन में, एक अलग सी फील आती है लोगों को अगर कोई उनकी उम्र कम बता दे, और एक अलग सा डर लगता है या एक अलग सा गुस्सा आता है उस व्यक्ति से जो 2-4 साल में उसकी उम्र ज्यादा बता दे। तो इस तरह की कंडीशनिंग से ही बाहर नहीं निकलेंगे। मैं कैसे लग रहा हूं, मैं कैसे दिखता हूं, तो ये बड़ी खतरनाक कंडीशनिंग है, काफी समय बाद जाती है, पहले तो ग्रॉस कंडीशनिंग से नहीं निकल पाते। तो अगर हम लोग भगवान की वेणु अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र उसका ठीक प्रकार से श्रवण करें, इवन चैंटिंग के समय भी जब 1.5-2 घंटे हमें बजाने का मौका मिलता है, बजाओ जितनी बांसुरी बजानी है, उसमें सोए रहते हैं, हमें टाइम दे रहेगा फूक लो अपनी बांसुरी जितनी फूकनी, कोई शोर, कोई नहीं बोलेगा नॉइज पॉल्यूशन, कोई नहीं बोलेगा बंद करो कम करो ऐसे क्यों बजा रहे हो, आती किसी को भी नहीं है। सोच कर देखो, किसी को बांसुरी नहीं आती, पू पू कर रहा सुबह शाम, सुनना चाहेगा कुछ से, और हमसे कोई इकट्ठा कर दे 1.5 घंटे का टाइम दे दे 2 घंटे का, लो बजाओ जैसी मर्जी बजाओ, उसमें भी नहीं बज पाती ढंग से, सुन ही नहीं पाते, कानों के अंदर जैसे लगता है ईयर प्लग लगाते ना लोग, बहु अपना मंत्र भी नहीं सुनना चाहते है, लेकिन वो एक अंदर ही अंदर सुनाई देता उसको। तो जो 2 घंटे का टाइम मिला भी है ढंग से, उसमें भी हम लोग नहीं सुन पाते, क्या सोचते हैं इस संसार के बारे में सब कुछ चल रही होती चर्चा, कि ये कैसे होगा, फिर वो कैसे होगा, फिर ये कब करना है, वो कब करना है। तो इसलिए स्लोगन्स लिखकर करनी चाहिए, चैंटिंग में बनाने चाहिए। हमें पता नहीं चलता, एक घंटे आधे घंटे बाद मालूम पड़ता, वो सुनना था काफी देर बाद मालूम पड़ता कि मैंने हरिनाम सुने नहीं, बड़ी देर से तो मैं सुन क्या रहा था, फिर मैं वही चल रहा था। देखिए उसकी भगवान की कृपा, देखिए खाली वाइब्रेशन, अगर जीवा को वाइब्रेट भी कर रहे हैं उसकी वजह से भी हमारी चेतना में विकास हो रहा है, और ये तब है जब थर्ड क्लास एंडिंग हो रही है हमसे, नहीं इफेक्ट दिखता है ना। उनवाजी कहते हैं कि आप ये मत सोचो, अब ये देखो कि कब शुरू किया था आपने, तब क्या थे और अब क्या हो। इस तरह की चैंटिंग से भी इतना बेनिफिट है, और जिस दिन सही चेतना में सुनते हुए ठीक प्रकार से हमने भगवान कह रहे ना, जिस प्रकार कृष्ण गोपियां जो है अपने कर्णों में उस पक्षी के अलावा था, तो उस हरि नाम के अलावा या उस वेणु के अलावा कुछ और सुनना ही नहीं पसंद करती। तो इस प्रकार अगर हम लोग भी ठीक प्रकार से उस वेणु को, हरि नाम को ठीक प्रकार से सुनेंगे, तो निश्चित रूप से इतने सारे आचार्य लोग कह के चले गए, इतने सारे ग्रंथों में लिखा है कि ये हरि नाम ही सब कुछ है, तो समझ ही नहीं आ रहा। तो जब जितना अधिक हम लोग हरि नाम लेंगे, कितने मंत्र सुन ले अच्छा है, और ज्यादा सुनने का प्रयास करें, तो तब जाके कुछ शुद्धिकरण की हम लोग आशा कर सकते हैं। नहीं तो सुकृतियां और पुण्य इकट्ठे करते करते जन्म बीत जाएंगे, मुद्दतें हो जाएंगी, जीवन बीत चुके होंगे, तो भी कई जीवन के बाद भी प्रभु जी मन नहीं लगता, प्रभु जी चैंटिंग सुनाई नहीं देती, ये सब प्रश्न के उत्तर। तो जब भगवान की वेणु बसती है, तो उस वेणु में बोलेंगे भगवान की ना, एक बड़ी सुंदर चीज बताइए वंशी के बारे में, कि भगवान की जो वंशी है अगर बंबू की बनी है तो क्या कहलाती है, अगर वो सोने की है तो उसको सम्मोहिनी कहते हैं, है ना, अगर वो ज्वेल से और प्रकार की जो है उससे जड़ित है तो आकर्षणी कहते हैं। और गोपियों को इन भगवान की वंशी और वेणु की ध्वनि, इवन ग्वाल बालों को, गोपियों को, सबको, पूरे के पूरे वृंदावन को मोहित किए रहती है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने सुना होगा, जब भगवान वंशी बजाते हैं तो किस प्रकार यमुना का जल उल्टा बहने लगता है, हिरण इत्यादि सब लोग जो है भगवान को घेर लेते हैं अपने उन कानों से सुनते हैं। भगवान की वंशी, शेष नाग जिसने अपने सारे ब्रह्मांडों को अपने शीश पर धरा हुआ है, वो झूमने लगते हैं ऐसे ऐसे करके भगवान के वंशी से। और ब्रह्मा जी अपनी तपस्या से बाहर, शिव जी की आंखें खुल जाती हैं, वो तांडव शुरू कर देते हैं। नहीं? तो इसका इफेक्ट इस संसार तक में है, जो सही चेतना में, शुद्ध चेतना में भक्ति कर उन सबको सुनाई देती है, मैसेजेस है, वो इंस्ट्रक्शंस है उनके लिए। तो जो व्यक्ति जितना प्योर, वो उतनी प्योरिटी से भगवान की उस वंशी को सुन पाएगा, उस मैसेज को क्या कर पाएगा, समझ पाएगा। तभी भगवान ने बोला कि मैं हृदय से जो है व्यक्ति का ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं ज्ञान का दीप जला देता हूं उसके हृदय में। उस दीप से क्या होता है, वो समझ जाता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मेरी क्या सेवा है, ये सब मैं उसको रियलाइज कराता हूं। लेकिन कम से कम इस बर्डन को तो उतारना पड़ेगा पहले, जितनी कंडीशनिंग है, नहाना तो पड़ेगा जो गंदगी लग चुकी है। तो इस प्रकार अगर जीवात्माएं जो इस संसार में है और वो भगवान की इस वेणु से अगर आकर्षित नहीं हो रही, और वो एक परफेक्ट जो साउंड वाइब्रेशन है संसार की, जो कि केवल संसार को दूषित ही कर रही है हर जगह, अगर इस प्रकार के शब्द यहां पर ज्यादा हैं तो वो दूषण करती हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र भगवान की जो वेणु है जिसे बोलते हैं, वो अगर उसको जितना ज्यादा वाइब्रेट करेंगे हमने जीवा से, तो हम लोग उतना ज्यादा इस एटमोस्फेयर को भी प्यूरिफाई कर पाएंगे स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन से। क्योंकि संसार में 70-75% पानी है, और जैसे एक साइंटिस्ट ने भी, डॉक्टर ने जो है अपनी एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया कि किस प्रकार ये जो स्पिरिचुअल साउंड है पानी पर, उसका क्या इफेक्ट होता है, और जो मटेरियल साउंड है उसका क्या इफेक्ट होता है, इतना बुरा इफेक्ट दिखता है। और स्पिरिचुअल साउंड से कितने सुंदर डिजाइन और सब चीजें बनती है। तो उस प्रकार हमारे शरीर में 70% है, संसार में भी 70% है। तो जितना ज्यादा साउंड वाइब्रेशन हम लोग वाइब्रेट करेंगे स्पिरिचुअल साउंड, वो उतना ज्यादा हमारी चेतना को, हमारे इसको पॉजिटिवनेस देगा, उतना ज्यादा हमें सुख शांति देगा। और जितना ज्यादा साउंड मटीरियल साउंड कानों से अंदर जाएगा और जीवा से बाहर निकलेगा, वो समाज को भी दूषित करेगा और हमारे शरीर में भी नेगेटिविटी प्रवेश करेगा। तो सब भक्तों से प्रार्थना है वेणु बजाएं, वंशी बजाएं, लेकिन हरि नाम की, ये हमारा शुद्धिकरण करेगा। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न या जिज्ञासा है? कई बार साधकों में, भक्तों में इच्छा होती है पर्टिकुलर किसी सेवा को करने की, और हमको सबको एक्चुअली काफी समय तक तो ये भी नहीं पता चलता जो ये इच्छा की है, ये इच्छा दूषित है। भक्त सेवा करते हुए उसके प्रति काफी अटैच भी दिखते हैं। मैंने कहा ना ये होना चाहिए क्योंकि भगवान को समय ये चाहिए, ये सेंटेंस बोल के भक्ति ये दिखाना चाहता है कि मैं कृष्ण कॉन्शियस हूं, जबकि बाद में पता चलता है नहीं, इसका खुद का स्वार्थ था पीछे, तो उसका लॉर्डिंग ओवरशिप का मेंटेलिटी था उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, काफी समय बाद मालूम पड़ता है। लेकिन जितना ज्यादा हम लोग, जैसे हमारी अगर अटैचमेंट किसी पर्टिकुलर सेवा से हो भी रही है या मन कर भी रहा है किसी चीज को, तो वो क्लियर करनी चाहिए कि मेरा मन पिछले कुछ दिनों से ये सेवा करने का कर रहा है। ठीक है ना? तो जो हमारे अथॉरिटीज हैं या जो गुरुजन हैं, उनसे क्लियर करना चाहिए हमें कि मेरा मन इसमें कर रहा है और मैं ये भी कर रहा हूं ऑलरेडी, तो क्या ये कर सकता हूं? अगर आपके पास समय है तो करिए। एक भक्त के पास इतना समय होता है या सीरियस भक्त के पास इतना समय होता है कि उसका मन जितनी प्रकार की सेवा कई बार करने को कर रहा है, और वो उसके साइकोफिजिक नेचर के अकॉर्डिंगली भी है, और कई बार ऐसी सेवाएं भी होती है जो बोली नहीं गई लेकिन हम बंद जाते हैं कि मैं इतना ही करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा, इससे ज्यादा करना पाप है। तो अगर भक्त उसको करता है, उसका इतना समय होता है कि वो सब कर सकता है, उससे भी उसका शुद्धि, क्योंकि भाव ये होना चाहिए कि मैं ये अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं कर रहा और मुझे इससे कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा, ये सेवा तो है इनकी, अगर ये करेंगे तो तब जाके पर्टिकुलर इनकी सेवा है, तो मैं उसमें अगर हेल्प कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय है, मैं चाहता हूं उस भक्त की हेल्प करना और सेवा मुझे अच्छी भी लगती है। तो ऐसे 50 चीजें आप देखोगे, सुबह से लेकर शाम तक आप मंदिर से एंटर ही करना शुरू करो, आपको 50 चीजें कर सकते हो। अगर बैरिकेडिंग टेढ़ा पड़ा हुआ है तो ये क्योंकि मेरी जॉब नहीं है, मैं क्यों सीधा करूं, है ना? तो कृष्ण देख रहे इस चीज को, है ना? तो मैंने सीधा कर दिया। उल्टे सीधे लोगों की चप्पलें यहां रखी है, मैं उठाकर उनको सही जगह पर रख सकता हूं, ठीक है ना? टेबल एक टेढ़ा पड़ा हुआ है, मैं उसको ठीक कर सकता हूं, अननेसेसरी चेयर गिरी पड़ी है, सुबह से लेकर शाम तक गिरी पड़ी है वो, है ना? तो क्या दिखने का, क्या सीधी कर सकता हूं, सही स्थान पर रख सकता हूं। फ्लोर में कभी किसी कपड़े गिरे हुए हैं, 15-50 लोग इधर से उधर चले गए, किसी ने भी उसको उठा के नहीं रखा। ये छोटी छोटी चीजें, लाइट जल रही है, लाइट बंद नहीं करी है, नेसेसरी जल रही है, तो ये हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस की एडवांसमेंट का साइन बताती है। ये नहीं कि ये तो इसी की सेवा ये यही करेगा, ये मैं क्यों करूं, अगर मैंने कर दी तो उसको लोग बोलेंगे यार कमाल, इसने इतना सारा कर दिया। और अगर हमने कर भी दिया हमने, उसके बाद उसको ग्लोरिफिकेशन मिल रहा है, तो हम बताना चाहते हैं कि मैंने भी करा था इसमें, मैं था एक्चुअली, मैं था, वो तो था ही नहीं वहां पर, मैं चला गया तो पहले कर दिया था। तो ये बड़ी छोटी चीजें हैं जो कि कई जगहों में, कई स्कूलों में, विदेशों में बचपन से बताई जाती हैं, और कई बार बड़े बड़े भक्त लोगों को भी एबीसीडी नहीं मालूम होती इन सब चीजों की, कारण लैक ऑफ ट्रेनिंग, कॉन्शियसनेस, नैरो माइंडेडनेस, और कॉन्शियस को ब्रॉड नहीं रखा, मतलब उस तरह नहीं रखा। तो बड़ी सारी चीजें चलते चलते 15 तरह के, आपको एक जगह से एक जगह जाने में 5 मिनट लगते हैं, आपको 6 मिनट लगेंगे, लेकिन आप 3-4 सेवा करके पहुंच सकते हैं। नहीं, परमात्मा है ना अंदर, वो नोट करते रहेंगे, यस ही इज इन गुड जॉब, ये कर दिया, ये कर दिया। ये हमारे शुद्धिकरण का, हमारे चेतना को और अपलिफ्टमेंट कराने में बड़ी हेल्प करती है सारी चीज। तब व्यक्ति क्यों शुद्ध भक्त हर छोटी छोटी चीज के लिए कॉन्शियस होते हैं, ये क्यों नहीं किया आपने, ये कैसे कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि वो हर जगह सब चीज को कृष्ण से रिलेटेड देखते हैं। वो जो है इस तरह घोड़े की तरफ लगाते हैं क्या, इतना नहीं देखते, वो सब कुछ देखते हैं और सब कुछ करने का प्रयास करते हैं, सबकी हेल्प करना चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर किसी भक्त के अंदर कोई गलती भी दिखती है, कोई गलत बोलता भी है, तो उसको मालूम है कि कुछ देर टेम्परेरी है, कुछ मटेरियल कंडीशनिंग है, बट मुझे भक्त की रिस्पेक्ट करनी है, मुझे भक्त का आदर करना है, मुझे उसकी सेवा करनी है। क्योंकि अगर हम लोग अननेसेसरली अपने कर्मों से, अपनी क्रियाओं से, अपने एक्सपोजर से, अपने एक्सप्रेशन से कई लोगों को दुखी कर रखा मान लीजिए, तो उन दुखी लोगों की भी बदवाएं लगती हैं जो हमारी भक्ति में नुकसान देती हैं। इसलिए बाहरी आचरण पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए भक्त को चाहिए वो हर व्यक्ति की रेस्पेक्ट करे हृदय से, नाटक नहीं, हृदय से रेस्पेक्ट करे। अगर उसके अंदर कोई गलती है भी, कोई कंडीशनिंग है उसकी भी, तो भी हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी कंडीशनिंग कुछ समय के लिए हो सकती है, कल को शुद्ध भक्त बनेगा, ऊपर क्या उसका फॉर्म है मालूम नहीं, बट इस कंडीशनिंग के कारण मैं किस भक्त को क्या बोलूं कि गलत है, और मैं अपने कारणों से या अपनी एक्टिविटीज से या अपने कर्मों से ऐसे उसको क्यों सोचने में मजबूर करूं कि मैं बेवकूफ हूं या मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा ही हूं। नहीं तो भक्तों को ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा वो भक्त बोलेंगे, कुछ ना कुछ होगा तो नुकसान होता है। इसलिए जो आपने पूछा कि दूसरों की सेवा देकर, तो सेवा देकर अगर कुछ मन कर भी रहा है तो पूछना चाहिए कि ये वो तो है नहीं ना कि हिटलरशिप तो है नहीं, आराम से बात कीजिए, एक बार कीजिए, दो बार कीजिए, हो सकता है आप एक बार में ना समझा पाओ, दूसरी बार जाइए, हो सकता है फिर आप ना समझा पाओ, कुछ समझ रहे हो, पूरी तरह ना समझ रहे हो, या हो सकता है उनका विचार किसी चीज को लेकर कुछ हो रहा है, फिर तीसरी बार जाइए तो बात सुनी जाती, नुकसान थोड़ी इसमें, ओपन रहना चाहिए। यस, कुछ होता है अच्छा, वो मैंने लिखा वंशी वेणु बांसुरी तीन तरह की होती हैं और उसके साइज इत्यादि भी बताए गए हैं एक जगह पे कि जो है जो वेणु है बताते हैं छोटी बांसुरी होती है जिसमें कि 6 इंच की होती है और इसमें 6 होल्स भी हैं, 6 ही इसके अंदर छिद्र होते हैं। मुरली जो है वो 18 इंचेस इससे थोड़ी सी बड़ी होती है और उसके अंदर जो है एक होल स्टार्टिंग में होता है, बाकी 4 पीछे होते हैं। और फिर जो है वंशी जो है उसके बारे में बताया गया, जिसमें 15 इंच की है लंबी और उसके अंदर जो है 9 छिद्र होते हैं। और इसके प्रकार लास्ट में जो मैं बता रहा था कि बांसुरी के साइज के हिसाब से भी छोटी बड़ी, अब ऐसे नहीं कि एक बांसुरी बताती इतनी, उसके साइज के अकॉर्डिंगली भी है, उसके डिजाइन के अकॉर्डिंगली भी नाम अलग है, आकर्षणीय, मोहिनी, हमने बताया सम्मोहिनी, तो उसका भी कुछ बताया कि जिसमें अगर रत्न जड़े हुए हैं तो उसको सम्मोहिनी कहते हैं और जिसके अंदर क्या कहते हैं गोल्ड लगा हुआ है वो आकर्षणीय है, इस प्रकार के नाम है। तो बंसुरी एक नहीं है, इसलिए पात्री जो है जो भगवान के वो है इतनी सारी बांसुरी हमेशा साइड में रखते हैं और भगवान के भाव को जानकर तुरंत बांसुरी निकाल के कहते लीजिए बजाइए, क्या करना क्या मैसेज, वरना 3 ही बांसुरी पकड़ के 3 ऐसे पकड़ने, एक तो भगवान ने लगा के बांसुरी दो है, वो यहां क्या रखते हैं, इतनी सारी बांसुरी होती है अलग स्टाइल की अलग अलग उसकी। तो इन सब का जो है उद्देश्य जो है भगवान अलग अलग जीव के लिए, अलग अलग पार्षदों के लिए मैसेज देते हैं, मैसेजिंग, SMS। और कुछ ग्रंथ है श्रीमद भागवतम की वेणु गीत की बताए गोल के श्री उपाध्याय।